अब चौथा और आखिरी काम तवाफ जियारत। तवाफ जियारत के लिए भी अल्लाह ताला ने वक्त बहुत तवील रखा है। दसवीं जिलहिज्जह को सुबह साजिक से लेकर बारहवीं जिलहिज्जह को मगरिब तक जब जी चाहे तवाफ जियारत कर सकते हैं। अफजल यही है कि दसवीं जिलहिज्जह ही को कर लिया जाए उस तरतीब के मुताबिक, लेकिन चूंकि आजकल मजबूरियां होती हैं इसलिए मशवरा यह दिया जाता है कि तवाफ जियारत के लिए ग्यारहवीं को जाए, दूसरे दिन जाए, या दूसरे दिन ईशा की नमाज के बाद जाए, उस वक्त बहुत ज्यादा सुकून होता है। ग्यारहवीं जिलहिज्जह को आपने कुर्बानी भी कर ली है, सर के बाल भी मुना दिए हैं, अब कपड़े में आप आ गए हैं, अब रमी करने के लिए जाएं मगरिब से पहले पहले दूसरे दिन की, और रमी से फारिग होने के बाद आप मक्का मुकर्रमा आ जाएं और ईशा की नमाज के तकरीबन एक डेढ़ घंटे के बाद तवाफ़े जियारत करें, तो हजूम उमूमन इस वक्त बहुत कम होता है। तवाफ़े जियारत का तरीका वही है जो उमरे के तवाफ का बतलाया गया था, फकत थोड़ा फर्क यह है कि अगर आप हलक करा चुके हैं और एहराम उतार चुके हैं तो जाहिर है कि आप कपड़ों में तवाफ करेंगे, और आपने अगर तवाफ़े जियारत के बाद की सही नहीं की है तो इस्तिबा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि कपड़े पहन चुके हैं। अब फकत पहले तीन चक्करों में रमल करेंगे, बाकी चार चक्करों में नॉर्मल हालत में चलकर तवाफ को खत्म करके दो रकात नमाज पढ़ेंगे मकाम इब्राहिम के पीछे या जहां कहीं जगह मिल जाए, खूब दुआ करेंगे, उसके बाद जमजम के कुएं पे जाएंगे, पेट भरकर खूब पानी पिएंगे, खूब दुआ करेंगे, और फिर सफा मरवा की सई जैसे पहले बतलाई गई थी उसी तरह पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप एहराम की हालत में आए हैं, अभी हलक नहीं कराया है और एहराम की दोनों चादरें पहनी हैं और सई भी बाकी है, तो अब रमल पहले तीन चक्करों में करेंगे और सातों चक्करों में इस्तिबा भी करेंगे, और तवाफ के खत्म होने के बाद दो रकात नमाज पढ़ेंगे, जमजम के कुएं पर जाएंगे और सई से फारिग होंगे। और अगर तवाफ़े जियारत के बाद की सई पहले आप कर चुके हैं मीना जाने से पहले, तो अब आप फकत तवाफ करके चले जाएंगे, और चूंकि सई नहीं है इसलिए रमल भी नहीं है, इस्तिबा भी नहीं है। अब एहराम की हालत में आए तब भी इस्तिबा और रमल नहीं, और एहराम के बगैर आए तो इस्तिबा तो है ही नहीं लेकिन रमल भी नहीं होगा। तवाफ़े जियारत ऐसी औरत के लिए जायज नहीं है जो पाकी की हालत में न हो, इसलिए कि औरत जब हालत हैज में होती है तो उसके लिए किसी भी मस्जिद में दाखिल होना जायज नहीं है। और तवाफ जियारत का मसला यह है कि बारहवीं जिलहिज्जह के गुरूब से पहले अगर किसी ने नहीं किया और बारहवीं जिलहिज्जह के गुरूब के बाद करता है, यानी वक्त के खत्म हो जाने के बाद करता है, तो ताखीर की वजह से उस पर दम वाजिब हो जाता है। लेकिन औरत जब हालत हैज में है तो चूंकि मजबूर है बिचारी, तो इसके लिए कायदा यह है कि बारहवीं के बाद तेरहवीं को या चौदहवीं को पंद्रहवीं को जिस वक्त भी वो पाक हो जाए गुस्ल करे और गुस्ल करके तवाफ जियारत कर ले, इस ताखीर की वजह से उसके ऊपर दम भी नहीं है। एक दूसरा बहुत ही अहम पॉइंट है और वो ये है कि तवाफ जियारत हज में फर्ज है, और तवाफ जियारत किए बगैर किसी भी किस्म का कफारा या फिदिया या दम देने से हज नहीं होगा। अगर तवाफ जियारत किए बगैर कोई वापस आ जाता है तो उस पर शरीयत मुतहरा का हुक्म यही है कि आपका हज अभी नाकिस है, इनकम्प्लीट है, फौरन मक्का मुकर्रमा जाओ, मक्का मुकर्रमा जाके तवाफ जियारत करो, और डिले करने की वजह से दम दो तब जाकर के तुम्हारा हज मुकम्मल होगा। بہت سے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے اور اپنی عورتوں کی ماہواری کے حساب کے بغیر ہی بکنگ کرا لیتے ہیں، حج کے دوسرے دن بکنگ کرا لی، تیسرے دن بکنگ کرا لی، 13ویں ذی الحجہ کو، 14ویں ذی الحجہ کو، 15ویں ذی الحجہ کو، اور عورت کو حیض آ گیا، حیض آ گیا، حیض سے پاک نہیں ہوئی، اور ادھر خطرہ یہ ہے کہ بکنگ کو کینسل کریں گے تو ایک مہینے کے بعد بکنگ مل رہی ہے، نوکری کا خطرہ ہے، تو طواف زیارت کرائے بغیر ہی عورت کو لے آتے ہیں. ایسی عورت کا حج مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ واپس جا کر طواف زیارت کر کے دم ادا نہ کرے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک بھی جب تک طواف زیارت نہ کرے اس وقت تک ان دونوں کے تعلقات ناجائز ہی رہیں گے. اب آپ تو احرام سے فارغ ہو گئے، گھر والی ابھی تک احرام میں ہے اس اعتبار سے کہ طواف زیارت نہیں ہوا. طواف زیارت جب تک نہیں کرتی اس وقت تک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات رکھے. اب طواف زیارت کیے بغیر آ گئے، ایک نقصان تو یہ ہوا کہ اب جو میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں یہ ناجائز ہے، گناہ ہو رہا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کا حج تو ہو گیا ہے، بیوی کا حج ابھی نہیں ہوا ہے. جب تک کہ یہ جا کر طواف زیارت کر کے دم دے کر فارغ نہ ہو اس وقت تک اللہ کے یہاں اس کا حج مقبول نہیں ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اپنا پلاننگ اچھی طرح کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ عورت کی عادت آگے پیچھے ہو گئی اور حیض کے ایام انہی دنوں میں آ گئے اور بکنگ کو کینسل کرنی پڑے، اپنی نوکری کو بھی چھوڑنی پڑے، تو یہ سب کچھ کریں لیکن طواف زیارت کیے بغیر واپس نہ آئیں. تو چار کام کرنے تھے، رمی کے احکام بھی بیان ہو گئے، قربانی کے احکام بھی بیان ہو گئے، حلق اور قصرہ کے احکام بھی بیان ہو گئے، اور طواف زیارت کے احکام بھی بیان ہو گئے. طواف زیارت کے سلسلے میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے نہیں کیا، رات کو کر لیا، رات کو نہیں کیا 11ویں ذی الحجہ کو دن میں کر لیا، 11ویں ذی الحجہ کو دن میں نہیں کیا رات کو کر لیا، 11ویں ذی الحجہ کی رات میں بھی آپ نے نہیں کیا اور آپ نے سوچا کہ چلو 12ویں ہی کو چلے جائیں گے، 12ویں کی مغرب تک تو کر سکتے ہیں، اطمینان سے ہجوم بالکل نہیں ہوگا، تو اس میں خاص خیال رکھے کہ آخری دن اگر 12ویں ذی الحجہ کو آپ طواف کرنے کے لیے جانے